यश सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है। कुछ कुछ पाप हमने पॉकेट में छुपा के रखे हुए हैं, पापों का समूल पहाड़ भगवान राम के नाम लेने से नष्ट हो जाता है ना। तो भगवान राम के नाम में बड़ी शक्ति है। आप जानते हैं सभी, भगवान राम के नाम लिखने से क्या हो गया था, पत्थर। क्या राम लिखने से पत्थर तैर सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? भगवान राम के नाम लिखने से, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम सालों साल से कथा करते आ रहे हैं सभी भक्त, क्या भगवान राम का नाम लिखने से पत्थर तैर सकते हैं? हाँ कि ना बताइए, क्या बोलते हैं? हाँ, श्रद्धा हो, भक्ति हो। लेकिन वानरों को तो कोई भक्ति नहीं थी, वानर लिख रहे थे, नर लिखे को तो मालूम भी नहीं था। हाँ जी, विश्वास था, ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं? हाँ जी, किसको वरदान था? अच्छा, तो सारे कृमि तैर रहे थे, नाम की तो महिमा नहीं, मतलब इसका अंदर तो पुल राम ने नहीं बनाया, नल नील ने बनाया। और अच्छा, हमें मालूम नहीं था कौन था, किसने बनाया होगा, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, कैसे पत्थर तैरने लगे? हाँ जी, भगवान की सेवा। हाँ, हम भी तो भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ लाते हैं तब बड़ा सा, उसमें सब विश्वास डालते हैं, कोई 15 साल से हरिनाम ले रहा है ना, वहां डलवाते हैं किसी से, डल भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, ठीक है। तो भगवान का नाम तो आज भी काम करना चाहिए, हम भी तो झोली में जप रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो फिर आज काम करना चाहिए। तो एक पत्थर पे नाम लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको डालते पानी में, तैरेगा कि नहीं तैरेगा? नहीं, विश्वास नहीं आपको, आप टीचिंग करते हो, आपको तो है नहीं है, बताइए जल्दी बताइए, और थोड़ा ध्यान लगाइए, क्या हो सकता है बताइए? नाम और नाम में भेद नहीं है, ठीक है। तो फिर अभी भी तो भेद नहीं है, आज क्यों नहीं तैरते? नल लेने के लिए तैरते, हमारे लिए क्यों नहीं तैरते? भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास नहीं है, ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को कथा कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक बात कही। आज हम रामचरितमानस नहीं बोल रहे, रामायण वाल्मीकि की नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत, है ना, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय हैं भगवान रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर, वैसे 3 है, एक लव कुश की लीलाओं के ऊपर है। तो रामचंद्र की लीलाओं को जो है बहुत ही संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रामचरित्र तो 24वीं चतुर्युग से चल रहा है, तो इसलिए तुम तो उसके बारे में कई बार सुन चुके हो, इसलिए मैं इसे विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो जो प्रश्न ये है, क्या भगवान राम की कृपा से पत्थर तैरे या भगवान के नाम से तैरे या वानरों की कृपा से तैरे? तो एक जटायु के भाई थे जिनका नाम था संपाती। संपाती और जटायु के अंदर एक बार रेस लग गई थी, कौन जीतेगा, जटायु जीतेगा या संपाती, और दोनों उड़ते 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 सूर्य देव के पास पहुंचे, और दोनों में रेस से पहले कौन पहुंचेगा, क्योंकि संपाती बड़ा भाई था, उसकी रेस ज्यादा थी, शक्तिशाली था, वो दौड़ में एकदम अव्वल नंबर पे आने वाला था, और जैसे ही सूर्य के नजदीक गया इतना ताप था कि वो संपाती के पंख जल गए और नीचे आकर गिरा। जब गिरा तो जटायु अपने भाई को बचाने के लिए नीचे आ गया, जटायु के पंख बच गए थे, इसीलिए वो बाद में सीता मैया की सेवा में लग पाया। तो जटायु रहता था वन के अंदर और संपाती रहता था समुद्र के किनारे, रामेश्वरम जिन स्थान है वहां पर आज भी वो स्थान है जहां से हनुमान जी ने वो एक बड़ी चट्टान पे चढ़कर के जंप किया लंका की ओर, तो वो स्थान आज भी है हनुमान शिला जहां से हनुमान जी ने जंप किया। तो रामेश्वरम वो स्थान जहां पर ये सारी लीलाएं हो रही है। तो अब समझने वाली बात यह है इसके अंदर कि भगवान राम की इच्छा से ये पत्थर तैरे या भगवान राम के नाम से ये पत्थर तैरे या भक्त के विश्वास से पत्थर तैरे। तो परीक्षित महाराज ने इसके बारे में, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को यहाँ पर वर्णन किया है, कहते हैं, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। तो भगवान राम जब जा रहे थे तो यहाँ लिखा है, बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका, समुद्र में फेंका जो ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे, जो ईश्वर की परम इच्छा से। अब देखो, बताया आज तक किसी ने ये रामायण सुन रहे कितने साल, अब ध्यान से नहीं पढ़ते, इसीलिए कहते हैं जब पढ़े ध्यान से पढ़े, ईश्वर की परम इच्छा से तैरने। अगर आज ईश्वर की परम इच्छा हो जाए कि आज इसको छिपीवाड़ा में प्रशांत मुकुंद दास ने एक चैलेंज कर दिया, पत्थर तैरा के दिखाओ, और भगवान की इच्छा हो जाए राधा वल्लभ की, नहीं मुझे ये बचाना है, तो आज भी तैर लेंगे। परम इच्छा भगवान की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये वो नाम लिख दिया तो तैर गए। हमने बड़ा चीपली समझ लिया है कि ये नाम दीवारों पे नाम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं तो जेसीबी आती है वो गिरा देती, बोले नाम की महिमा, नाम की महिमा समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये नाम खाली अक्षर नाम है ना? पूरा जीवन हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर हमारे अंदर भक्ति क्यों नहीं आती है, भगवान क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि नाम तो लय पर नाम नहीं आए, नाम तो लय पर अक्षर घूमते हैं लेकिन नाम नहीं आता है, क्योंकि हमने अभी तक भगवान का नाम वो समझा ही नहीं है। नाम चिंता मणि चैतन्य रसा विग्रह पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, पूर्ण शुद्धो पूर्ण शुद्ध कर सकता है, पूर्ण मुक्तो व्यक्ति को पूर्ण मुक्त कर सकता है ना? ऐसा है भगवान का नाम। हम खाली से पत्थर तैरा रहे हैं या फिर अपने औपचारिकता पे जप कर रहे हैं, सोच के देखिए। नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब सोचो वो पूरा हो जाए, चिंतामणि हुआ ऐसा। आप सोचो दो पास मिल जाए यहाँ पर मुझे जन्माष्टमी के, और हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण हरे मिल जाए, नाम चिंतामणि। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उसको नाम को चिंतामणि के लिए, अभी तो आपको चिंता अबाउट मनी रहती है, पैसा कैसे रहेगा, चिंता बहुत मणि चिंता मणि। लेकिन जब चिंता मणि सच में कार्य करती है तो फिर ये सारी चीजें होती है। तो जामवंत जी को जब सारे सारे पहुंच गए थे रामेश्वरम के किनारे, संपाति वहां पर थे, तो संपाति ने देखा बहुत सारे लोग आ गए हैं छोटे छोटे, और बहुत विशाल था गिद्ध, उसने कहा मैं सबको खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमें खाइए मत, हम भगवान राम की सेवा के लिए जा रहे हैं। कहे कौन? कह रहे वो राम जिनकी पत्नी की सहयोग एक गिद्ध जटायु ने किया था, एक वो था एक तुम हो। जटायु नाम लिया तो बोला जटायु, जटायु तो मेरे भाई का नाम है, कहाँ है वो? कहा वो तो भगवत धाम चला गया, भगवान के वो गोदी में था। जटायु के बारे में आप जरा जान के सोचिए जटायु की स्थिति कैसी है। अगर किसी ने भगवान का नाम बोलता है, नाम जप करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, कंठी पहननी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तब व्यक्ति भक्त बनता है अंत काल में भगवान के धाम। जटायु ने कौन कौन सा चार नियम का पालन किया बताओ, क्या चार नियम पालन किया, क्या चार नियम पालन? सुबह 4 बजे उठता था, सोता ही नहीं था वो, तो जागा ही रहता था हमेशा, और हमेशा वो क्या करता था, प्रसाद खाता था भोग लगा के, है ना, मांस खाता था जंगली जानवरों का पड़ा हुआ उसको नोच नोच के। वो पर स्त्री पर पुरुष संत तो करते ना, कि पुरुष स्त्री था गिद्ध था, जुआ आदि खेलने का मौका नहीं था, लेकिन मांसाहार का सेवन करता था, निद्रा आदि तमोगुण में रहता था, ऐसे ही जटायु था। लेकिन ऐसी क्या उसके अंदर श्रेष्ठता आ गई कि उसने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, ऐसा क्या ऐसी श्रेष्ठता उसके अंदर आ गई? बहुत जब जटायु जंगल में रहा करते थे और भगवान सीता राम लक्ष्मण वहां पहुंचे, तो जटायु ने कहा तुम कौन हो, खा जाऊंगा। तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मैं अयोध्यापति दशरथ महाराज का पुत्र श्री राम हूं। जटायु एकदम से बड़े विशाल से छोटा हो गया, बोले अच्छा दशरथ महाराज के पुत्र है, कैसे हैं दशरथ? कहा कि आप जानते हैं? कहा हाँ, जंगल में एक बार आए थे, एक जानवर से उन्होंने मेरी रक्षा करी थी। दशरथ का मतलब है जो अकेला 10 रथ को जीत सकता है, 10 रथ सामने आ रहे हो, 10 रथी अलग अलग रथ पे, और दशरथ महाराज अकेले जाए तो एक तलवार से 10 रथ लोगों की गर्दन काट सकते थे, इतनी शक्ति क्षत्रिय, 10 रथ को रोकने की शक्ति रखने वाले दशरथ महाराज, उन्होंने मेरी रक्षा करी। कहा सच में? तो आप कौन हो गए? दशरथ महाराज मेरे मित्र है, तो बेटा बहू हो गए, बेटा बहू अगर फार्म हाउस में आए मेरे जंगल में तो उनको खाना पीना देना है। बोलो क्या लाऊं? फल फूल आदि के लिए दिया, कुटिया बनाने का भी मौका दिया, वहां पे वो रहने लगे। लेकिन जब चले गए सीता मैया को लेकर के रावण, उस समय देखिए आप स्थिति, भगवान राम गए थे हिरण के पीछे, लक्ष्मण भी गए थे हिरण के पीछे। अब यहां पर यह नहीं सोचना चाहिए, लोग बोलते हैं
ऐसे कैसे चले गए सीता जी को छोड़ करके, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर एक लाइन ये कोई पढ़ लेगा, ईश्वर की परम इच्छा, सारी लीलाएं उसके समझ में आ जाए। ये समझना इंपॉर्टेंट, ईश्वर की, भगवान चाहते थे कि ऐसा हो। भगवान मन में ही नहीं आते। भगवान राम जब अयोध्या में थे और अयोध्या वासी उनका कोरोनेशन सेरेमनी, जब उनको मुकुट धारण करना था, दशरथ महाराज ने अनेकों अनेकों विद्वान पंडित आदियों को बुलाया और उनके राज्य अभिषेक होने वाला था। तुरंत ही देवी देवताओं ने कहा, ये क्या हुआ? भगवान से इतनी रिक्वेस्ट करी कि हे प्रभु, एक अतिताई रावण है जो तीनों लोगों को परेशान करता है, सभी की स्त्री लेके भाग जाता है, रंभा को लेके भाग गया, अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को लेके भाग गया। कहा इसने तो अतिताई कर रखी है, अति कर रखी है, ऐसे व्यक्ति का वध करने के लिए क्या करना है, प्रभु को बुलाना है। तो प्रभु को बुलाने के लिए मीटिंग हुई, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, किस किस को बुलाओ। तो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी से, पूछा कि ब्रह्मा जी आप बताइए प्रभु कहां मिलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो इतना ही जानता हूं, मैं नाभि कमल से प्रकट हुआ था तो मेरे हिसाब से ब्रह्मा जी क्षीर सागर पे, बोले विष्णु भगवान रहते हैं, उसके आगे उनको मालूम नहीं क्षीर सागर या कर्ण सागर या गर्भक सागर, बस बोले इसके आगे मुझे मालूम नहीं, इन तीन स्थानों पर मिल सकते हैं। नारद जी से पूछा गया, नारद जी आप बताइए भगवान कहाँ है, उनको अवतरण लेना है। तो नारद जी बोले, यत्र गायन्ति मद्भक्तां तिष्ठान्ति तत्र नारदः। हे नारद, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गान करते हैं। तो नारद जी की वहां, नारद जी ने कहा, अच्छा आपने अपना अनुभव बताया, आपने अपना बताया, देवी देवताओं की मीटिंग चल रही थी, स्पेशल कॉन्फ्रेंस हाउ टू किल रावण सेमिनार था, मीटिंग का टॉपिक था, एजेंडा रावण को कैसे मारा जाए। फिर क्या हुआ, बीच में शिव जी को भी बुलाया, शिव जी आप भी आइए, आप हम देवों के देव महादेव हैं, आप भी कुछ वर्णन करिए ना कि कैसे रावण का वध किया जाए। तो पार्वती कहती है, शिव जी आपका तो भक्त है रावण, क्या आप इस मीटिंग में जाएंगे? कहा कि वो अलग एजेंडा है, वो भक्त है ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे यहाँ पर होना पड़ेगा क्योंकि डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ेगा। अब मीटिंग में प्रश्न भी पूछ लिया गया कि हे प्रभु ये वर्णन करें कैसे मारा जाए रावण, और भगवान कहाँ रहते हैं, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करेंगे अवतरण होने की। तो भगवान के बारे में जब पूछा गया तो शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से हरि हर एक जगह व्यापक है, परंतु अगर आप उनसे प्रेम करेंगे, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, मैं जानता हूं अगर आप अधिक प्रेम करेंगे तो श्री राम वही अवतरण ले लेंगे। सभी देवी देवता समझ गए, भगवान राम को प्रेम से पुकारा और अयोध्या में भगवान राम दशरथ महाराज के घर में प्रेम के कारण कौशल नरेश के घर में प्रकट हो जाते हैं ना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे भगवान रामचंद्र बड़े हो रहे हैं, बाल लीला हो रही है, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, भगवान का राज अभिषेक होने वाला है। देवी देवता बोले, ये क्या अभिषेक करके राजा बनाने भेजा था उनको? रावण का वध करना था। रावण रहता है कहां? लंका में, तीनों लोगों में घूम रहा है। प्रभु राम तो सेटल होने की सोच रहे हैं, ये तो सेटल हो रहे हैं, शादी हो जाएगी, सेटल हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो अलग ही जा रहा है, कुछ करो। तो सबने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, ब्रह्मा तुम तो सृष्टि के रचयिता हो, मुख्य कारण है कृष्ण, गौण कारण है ब्रह्मा, गौण सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी रीजन है कृष्ण, लेकिन सेकेंडरी रीजन ब्रह्मा। ब्रह्मा से बोले, सृष्टि में कुछ ऐसा करो उथल पुथल कि भगवान राम निकल जाए, जाए रावण की ओर, वरना जा ही नहीं रहे। कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती से कहा, हे सरस्वती तुम जाओ और जाकर के कुछ ऐसा करो कि भगवान राम घर छोड़कर के चले रावण की ओर, लंका की ओर, वरना जाने वाले नहीं है। तो ये भी भगवान की इच्छा थी। तो भगवान ने केकई मैया को दर्शन दिया। अब कुछ जगह वर्णन आता है, क्योंकि 100 करोड़ रामायण है, सत कोटि अपारा, सत मतलब 100 कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ रामायण है, चतुर्युगी 4 तो घूम ही चुकी हैं, सत कोटि अपारा 100 करोड़ रामायण में से कुछ रामायण कहती हैं कि केकई मैया को दर्शन दिया था साक्षात रूप में, और कुछ कहते हैं स्वप्न में बात केकई को दर्शन दिया। भगवान राम ने कहा, हे मैया मैंने तुम्हारे घर में आया हूं और तुम्हारी सेवा लेना चाहता हूं। क्या सेवा है? कहा तुम्हारी सेवा लूंगा कि तुमसे मैं एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे ऊपर पेंडिंग है राजा दशरथ का, वो तुमसे मंगवाने के लिए कहूंगा। उस वरदान में तुम मांगोगी भरत को राज अभिषेक और राम को वनवास, ये तुम्हें मांगोगी। अरे घबरा के भगवान बोले, भरत मर जाए लेकिन राम ना जाए, ये स्थिति है केकई की। अब जो लोग जानते नहीं है रामायण को, रामचरित्र को, वो सोचते हैं केकई जैसी दुष्टा कोई नहीं थी, परंतु केकई मैया बड़ा प्रेम करती है राम से, भरत को बाद में दूध पिलाती है, पहले राम को दूध पिलाती है। तो ऐसी केकई मैया को दर्शन दिया भगवान ने, कहा तुम मेरी सेवा में लगो, केकई सेवा के लिए तैयार होगी, परंतु बोली कि मैं कुछ ऐसा करूं इसके लिए भी तो कोई गौण कारण होना चाहिए। तो सरस्वती मैया मंत्रा नामक एक दासी की जिह्वा पर बैठ गई, बोली अब इसकी क्या कर दूंगी, जिह्वा स्लिप करा दूंगी और उससे ऐसा काम करूंगी कि केकई के कान भरने का काम, ताकि सब लोगों को ये लगे कि केकई की कोई गलती नहीं थी, गलती तो थी मंत्रा। इस प्रकार से सरस्वती मैया ने सारा खेल रचा। अब सरस्वती मैया सेवा तो कर गई, बाद में बड़ी घबराई हुई थी, बोली मैंने ये क्या किया, भगवान के आरामदायक गद्दों से निकाल करके उनको वनवासी वेश प्रदान करवा दिया, ये मैंने क्या किया। भगवान बोले चिंता मत करो सरस्वती, क्योंकि तुमने ये मेरी लीलाओं का क्या किया है, कार्य किया है, तो जो भी लोग क्या करेंगे मेरी इन वन की लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनको सरस्वती ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके सरस्वती का, और लोग आपकी उपासना करेंगे, है ना। हम लोग भी तो बोलते हैं, जब हम रोज सुबह भागवतम प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माता की जय बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम, व्यास देव के ऊपर कृपा करने वाले देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरेत। तो ये जो देवी है सरस्वती, इनको कृपा किसने दी, भगवान राम ने कृपा करी, कहा चिंता मत करो मेरी वन की लीला है। इसलिए इतने सालों से 11,000 वर्ष भगवान राम ने राज्य किया, और कई जगह 13,000 वर्ष राज्य के वर्ण, 13,000 सालों में से सिर्फ 14 साल की वनवास लीला है। सोचो 13,000 साल की अवधि में से 14 साल अगर घूम भी आए तो ऐसे हो गया ना जिससे आप बद्रीनाथ चले जाते 7 दिन का यात्रा करके लौट आते हैं, तो क्या फर्क पड़ गया भगवान की लीलाओं में। परंतु कहते हैं राम वन को गए तो राम बन गए, क्या कहते हैं, राम वन को गए तो राम बन गए। अगर भगवान राम की वन की लीलाएं ना होती तो राज्य की अभिषेक की लीलाएं कोई सुनता नहीं, राम कथाएं होती नहीं। ये जब राम वन की लीलाएं चालू होती है तभी लोग श्रवण करते हैं, क्योंकि ये सरस्वती और एक लिंक है, सारा का सारा जुड़ा है। तो सरस्वती की कृपा होती है, लोग ज्ञान का भंडार होता है और लोगों के ईर्ष्या द्वेष मुक्त होता है, कृपा होती है उनके भगवान राम की। तो भगवान निकल गए दंडकारण्य वनों में जा रहे थे। अब जब भगवान पहुंचे हैं सीता मैया राम लक्ष्मण के साथ में, तो जटायु ने पूछा कौन हो, तो हमने आपको वर्णन किया, बताया कि हम दशरथ महाराज के बेटे हैं। उन्होंने कहा अच्छा दशरथ के बेटे हो, रहो आराम से, बहू रानी के लिए और बेटे के लिए व्यवस्था कर दी गई। परंतु कुछ ही समय बाद भगवान की परम इच्छा के कारण क्या हुआ, रावण ने उनको। अब आप देखे यहां पर भी बड़ी अच्छी एक बात है, रावण ने सीता मैया को छुआ उठाया ले गया, ऐसा हो सकता है, रावण सोच भी नहीं सकता, परम परम लक्ष्मी जो सहस्त्र कोटि लक्ष्मियों को प्रकट करने वाली अलादनी शक्ति सीता मैया, ये लक्ष्मी नहीं है, सीता मैया अलादनी शक्ति है, राधा रानी की तरह अलादनी शक्ति को छू सकता है कोई पापी दुराचारी, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान राम ने क्या किया, पहले ही पंचवटी के अंदर कुटिया के अंदर अग्निदेव को पुकारा, अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव आए और उनसे कहा अग्निदेव मेरी पत्नी आप इसको रख लीजिए सीता को, और मुझे एक छाया सीता जिनका नाम वेदवती था, जो पूर्व जन्म से भगवान राम का संग पाना चाहती थी, और वो वेदवती छाया सीता के नाम से जानी जाती है, छाया रूप सीता प्रकट हुई, उन्होंने उनका रूप लिया और वो बाहर आ गया, और इसीलिए रावण उनको छू पाया, क्योंकि वो आराधनी शक्ति नहीं है भगवान की, वो एक स्त्री है जिनका पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है वेदवती का छाया सीता के रूप में। तो ये जानने वाली बात है कि जो ये माया सीता है इसको लेकर के रावण उड़ गया, कोई रावण सीता मैया को छू सकता है, भगवान नारायण की सेवा किए बिना कोई लक्ष्मी जी को छू सकता है। लेकिन दीपावली के दिन हम देखते हैं लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी अपने वाहन पे आती है, और उनका वाहन क्या है, इसलिए आप लोग उल्लू बन गए हैं ना, कहीं का धन कहीं चला जाता है, कोई बोलता है मेरे पे लोन चल रहा है, कोई कहता है मेरे किस्तें चल रही हैं, कोई कहता है मुझसे धोखाधड़ी हुई, कोई कहता है बच्चों ने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, कोई कहता है मेरे बच्चों को पढ़ाने में इतना लगाया बच्चे भी पूछते नहीं है। सब कारण यही है कि हमने लक्ष्मी की सेवा करी तो लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चंचला है और स्थिरा है। जब लक्ष्मी के साथ उनके पति देव नारायण को पुकारेंगे तो नारायण आते हैं गरुड़ के ऊपर बैठ करके, और नारायण का वाहन है क्या, नारायण का वाहन है गरुड़, गरुड़ किसका प्रतीक है, बुद्धि विवेक का। तो जब बुद्धि विवेक आता है तो व्यक्ति का पैसा धन लक्ष्मी सद उपयोग में लगती है, मंदिर निर्माण में लगती है। अब यहाँ भक्तों ने इस मंदिर निर्माण के लिए लगाया है, हमारे द्वारका में मंदिर बन रहा है उसमें भक्त निर्माण में मंदिर में पैसा लगा रहा है, सभी जगह स्कॉन के मंदिर आदि बन रहे हैं, भक्त निर्माण में पैसा लगा रहा है। तो ये धन का सदुपयोग करना है। तो लक्ष्मी अगर सही रूप से सेवा में लगती है तो क्या हो जाता है, लक्ष्मी फिर स्थिरा बन जाती है उसके घर में, वरना वो लक्ष्मी घूमती रहती घूमती रहती है, वरना वो लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास रहने वाले। तो ये जो जटायु थे जब इनको मालूम पड़ा कि सीता मैया को उठाकर के रावण ले गया है, तो पता है क्या किया जटायु, ऐसे नहीं था उदास बैठा रहा, बोले क्या हुआ, बोले वो सीता मैया को ले जा रहा, क्या ले जाने दो अपने को क्या करना है, मैं तो गिद्ध हूं, ये पता नहीं वो भगवान की लीलाएं चल रही है। जटायु ने पूरा प्रयास किया, बूढ़ा बुजुर्ग जटायु था, उसकी वृद्ध अवस्था थी, उसने अपने दोनों पंखों से उड़ उड़कर चोंच मारने की कोशिश की रावण के अंगों पर। रावण बलशाली था, शक्तिशाली था, हाथ में उसके तलवार थी, फिर भी सीता मैया अपना हाथ छुड़ा रही थी, जो छाया सीता थी, प्रयास कर रही थी मेरा हाथ छूट जाए, और इधर रावण जो था वो सीता मैया को देख रहा था, परंतु जटायु ने अपनी फ्लाइंग ऊंची, हाईएस्ट फ्लाइंग, बताते हैं पूरे जीवन में गिद्ध कभी इतना ऊंचा उड़ नहीं सकता है, गिद्ध ने उसके पुष्पक विमान जो था रावण का उस पर पूरा जंप किया और पकड़ना चाह रहा था कि कैसे भी नीचे गिरा दूं और सीता मैया को पीठ में बिठाकर नीचे ले जाऊं, सेवा का भाव। तो यहां पर वो पापी था, दुराचारी था, चार नियम तोड़ता था, मांसाहार खाता था, कभी नाम जप नहीं करता था, ऐसा जटायु क्या हो गया, सीता मैया की नजर उस जटायु पे पड़ गई। ओहो, ये तो मेरी सेवा में आया, कौन है? जब सीता मैया की नजर पहले रावण पे थी, लेकिन वो सीता मैया भी सीता भी नहीं है, सीता की अंश मात्रेन वेदवती छाया सीता है, उनकी नजर पड़ते ही जटायु पे रावण ने क्या किया, उसके पंख काट दिए। लेकिन जब वो नीचे गिर रहा था, बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से, बड़ी ही विदीर्ण कर देने वाली दृष्टि से कि ओहो मेरा बेटा, इस भावना से सीता, छाया सीता ने जटायु को देख लिया, बस सर्व पाप प्रणाशनम, जितने पाप उसने किए थे सब विग्रह हो गए किस दृष्टि मात्र से। तो जब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं विग्रहों के, इसके सामने कभी कभी भीड़ बहुत होती है और हमको दर्शन पाने का मौका नहीं मिलता, कई मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो उस समय धक्का नहीं देना चाहिए, दंडवत कर देना चाहिए कहीं जहां मौका मिले। क्यों? आप भगवान को देख पाए ना देख पाए, परंतु भगवान अपनी दृष्टि आप पर डाले कि मेरा भक्त मेरे से मिलने आया। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आप देखते हैं कि खाली चक्र को प्रणाम करने से ही भोग लग जाता है ना? कई भक्त हैं जिनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था, रघु भक्त थे, वो छोटी जाति के थे, उनको अंदर नहीं जाने देते थे, हाथ में आम लेकर के चक्रा को कहते हैं जगन्नाथ मुझे आपके मंदिर में आने नहीं देते हैं, और हाथ से ही उनके आम अदृश्य हो जाते थे। ऐसी कृपा करते हैं भगवान, अगर आपके अंदर सच्ची भावना हो, अगर आप सच में भगवान को समझ चुके हैं, अगर आपने सच में नियमों का पालन किया है, तो ये भावना कोई छोटे स्तर की भावना नहीं है। अब जटायु जैसी विशेष कृपा, भगवान की सेवा करने का मौका जब मिलता है तो हम गायब हो जाते हैं। जब बोले प्रभु जी ये सेवा है, आपको जाना है मंदिर निर्माण के लिए दान मांगने, प्रचार करने, कार्यक्रम के, तो भगवान प्रभु जी थोड़ा बिजी हूं, बाद में आओ चलेगा, तो कभी दृष्टि पड़ेगी भगवान की। हमें बड़ा अच्छा लगता है प्रसाद खाना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब तो अच्छा लगता है, ये सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि ये भक्त बनाने की प्रक्रिया है। परंतु अगर आप सच में भक्त हैं तो अब ऊपर उठिए और अब सेवा में जुड़िए। प्रेम आनंद से भी ऊपर का आनंद है सेवा आनंद। सभी वानरों ने ये नहीं सोचा मेरी पूंछ कट गई है, कई वानरों के बच्चे मर गए, आपको पता भी नहीं, रामायण में उनका नाम भी नहीं आता है, कितने करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रावण के भाई, उनके रावण के राक्षसों ने वानरों के बच्चों को मारा, परंतु उन वानरों का नाम है जिन्होंने सेवा करी, लेकिन जो मरे गए वो, लेकिन भगवान ने उन सभी को धाम प्रदान किया, क्योंकि वो सब भगवान की सेवा में लगे। इसलिए भगवान के प्रेम से भी ऊपर का आनंद है सेवा आनंद, इसलिए सेवा से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। तो इस प्रकार से जटायु पर बड़ी कृपा करी, दृष्टिपात होने से ही सारे पाप नष्ट हो गए। और भगवान राम ने पता है क्या किया जानते हैं? भगवान राम ने उनको अंत समय में दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किसका किया? और दशरथ महाराज जब मर रहे थे, प्राण त्याग रहे थे, तो उनके बेटा राम उनके साथ नहीं था, रो रहे थे राम राम राम। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, तो उनके साथ राम का नाम था, इनके साथ स्वयं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार दशरथ महाराज को नहीं मिला, वो जटायु को क्यों मिला? क्योंकि जटायु ने क्या किया, अपने अंत समय में अपनी परवाह ना करते हुए भगवान की सेवा की। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी परवाह ना करते हुए भगवान की सेवा की। आप इस मंदिर में आज बैठे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, इसका कारण है कि प्रभुपाद अपने अमेरिका जाने से पहले इन स्थानों पर रहकर श्रीमद भागवत को ट्रांसलेट करते आ गए। हमको तो आने के लिए बोलते जाए कि वहां आना है लेक्चर सुनने के लिए, तो भी आदमी कहता है 6-8 बजे का, 8:30 आऊंगा, 9:15 पहुंचूंगा, जल्दी नहीं निकला जाता है। सोचिए श्रील प्रभुपाद इस स्थान पर आकर स्थान ढूंढे हैं, रखे हैं, बनाए हैं, तो इतना मेहनत करें भगवान के लिए। जब आप बिना किसी लालचवश सेवा करते हैं तो भगवान की अधिक कृपा होती है। तो यहाँ पर बताया गया है दो प्रकार के बल होते हैं, भागवतम के इस अध्याय में वर्णन है। एक बल होता है देव बल, एक होता है पुरुषकर। पुरुषकर मतलब अपने पौरुष, अपनी मेहनत से व्यक्ति प्राप्त करता है। तो यहाँ बताया गया है बल दो प्रकार का होता है, एक देव एक पुरुषकर। देव बल अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? अध्यात्म से प्राप्त। और पुरुष बल जो होता है वो अपनी बुद्धि और शक्ति से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म बल भौतिकवादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वे आधुनिक हथियारों से युक्त क्यों ना हो। मम अनुस्मरणम युद्ध चाह, भगवान ने गीता में कहा मेरा चिंतन करके युद्ध करो। हमें शत्रु से अपनी शक्ति पर लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने के लिए लड़ना नहीं चाहिए। हमें शत्रु से तो लड़ना चाहिए परंतु विजय पाने के लिए लड़ना नहीं। विजय पाने के लिए भगवान पर आश्रित होना ही देव बल है। देव बल से जटायु जो था उनके पास में बल था देव बल, राम की सेवा का बल प्राप्त हुआ। और रावण के पास में बल था और पौरुष बल था। पौरुष बल एक समय में चला जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आज बहुत ऊंची गद्दी पर हो, हम कहते हैं मंदिर के अंदर ऊंची गद्दी पर हो, परंतु उसके अंदर अगर अहंकार विराजमान है तो कुछ समय में उसका पौरुष बल समाप्त करके उसको गिरा सकता है। लेकिन अगर कोई देव बल से, चाहे ऊंची गद्दी का हो चाहे नीची गद्दी का हो, नया भक्त हो चाहे पुराना भक्त हो, अगर वो देव बल से आया है, कृपा से भगवान का भक्त बना है, कृपा पर निर्भर है, सदा भगवान का चिंतन करता है कि हे प्रभु मुझ में कोई शक्ति नहीं है, ये तो आपकी कृपा से मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूं, तो फिर व्यक्ति के अंदर बहुत शक्ति आती है। ऐसी शक्ति आती है जैसे श्रील प्रभुपाद जी के अंदर शक्ति। प्रभुपाद जी से जब पूछा जाता था अमेरिका में कि हे प्रभुपाद आप पूरे विश्व को कैसे परिवर्तित कर पाए, तो प्रभुपाद कहते हैं मुझ में कोई शक्ति नहीं है। ये कहां से आती है शक्ति? मेरे गुरुदेव की कृपा से ये शक्ति आती है। मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूं, जैसा मेरे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया उनकी कृपा से मैं ये कर रहा हूं। तो व्यक्ति को कभी जीवन में ये समझ नहीं आना चाहिए कि ये जो मैं कुछ कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो सेवा कर पाता हूं, ये मेरे कारण है। किसके कारण है? ये भगवान की, कृष्ण के कारण है। भगवान कृष्ण आदि पुरुष भगवान है। यहां पर भगवान राम ने रावण को कुत्ते के साथ में कंपेयर किया, कुत्ते के साथ में। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, भगवान राम रावण को कुत्ते के साथ कंपेयर कर रहे हैं, परंतु इस्कॉन में हम कई जगह सुनते हैं, कई भक्त ऐसा वर्णन करते हैं कि जो रावण है वो जय और विजय है। जय और विजय जिन्हें चतुष कुमारों ने रोक दिया था, जय और विजय ने चतुष कुमारों को वैकुंठ धाम में प्रवेश करने से, तो चतुष कुमार जो थे वो अंदर जाना चाहते थे भगवान का दर्शन करने। 6 गेट तो पार कर गए, परंतु सातवां, सात जो वैकुंठ के द्वार है, सातवां गेट पार करने वाले थे, तुरंत रोक दिया, बोले अरे नंगे बच्चे कहां जाते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी योग शक्ति से 5 वर्ष की अवस्था में अपने को बनाया है। ब्रह्मा के पहले 4 मानस पुत्र है, इनके अंदर निर्विशेषवादी थे, निराकारवादी मायावादी कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति थे कि भगवान को मानते तो थे लेकिन भक्त नहीं थे भगवान, इसीलिए भगवान के वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। वैकुंठ में प्रवेश उसी को मिलता है जो भगवान का भक्त होता है। अब ये भक्त बने कैसे? तो जब इनको जय विजय ने रोक दिया, जो भगवान के द्वारपाल थे, तो इन्होंने श्राप दिया, कहा आसुरों राक्षसों की तरह बीच में खड़े हो, भगवान और हमारे बीच में आते हो, हम तुम्हें क्या करते हैं, श्राप देते हैं, जाओ नीचे जाओ। अब ये भी किस कारण से हुआ? वही लाइन, ईश्वर की परम इच्छा से।
ये लाइन हमेशा याद रखना, सारी लीलाएं अंदर हृदय में प्रवेश करेंगी। ईश्वर ईश्वर की परम इच्छा से हुआ, भगवान अपने घर पर बैठ करके बाहर आए, तुरंत आकर कहते क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतना शोर शराबा। कहा कि इन्होंने हमें शराब दे दिया है जय विजय को, हम वैकुंठ में आए, भगवान आपने गीता में कहा है न तत् बसाए तो सूर्यो शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं ममः। मेरे धाम में आने के बाद में वापिस इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता है प्रभु, पर हम तो आपके द्वार पर बने, स्वरूप मुक्ति प्राप्त करिए, आपको ऐसा रूप मिला है, परंतु अब हमें नीचे भेजना है, ये कैसे, ये शराब दे रहे हमको। तो जब भगवान गरुण पर बैठे थे, चतुष कुमारों ने दर्शन किया, वही चीज, अरे भगवान का दर्शन वो नहीं कर पाए क्योंकि भगवान को ऊंचे गरुण से नीचे आ रहे, लेकिन भगवान का दृष्टिपात पड़ते ही चतुष कुमार चारों के चारों क्या बन गए, और भगवान से नीचे आने से पहले गरुण के पैरों पर तुलसी अर्पित हुई, क्योंकि भगवान पर जब चढ़ाते हैं तो गरुण पर भी थोड़ी तुलसी चढ़ जाती है, तो गरुण के पैर पर जो तुलसी चंदन था, उस चंदन की और तुलसी की जो खुशबू थी मकरन, वो नासिका में प्रवेश कर गई चतुष कुमारों के, और ये निर्विशेषवादी निराकारवादी भगवान को निराकार मानने वाले चतुष कुमार एकदम तपस्या बल से जो पहुंचे थे वो भक्त बन गए, ऐसे भक्त बन गए, ऐसे भक्त बन गए, रात दिन श्रीमद भागवत कथा ही बोलते और कुछ बोलते ही नहीं, सब कुछ करना बंद कर दिया, बस भागवत करते सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। एक बार उनको पार्वती जी ने श्राप दे दिया चतुष कुमारों को, कहा कि इधर उधर आप हमारे कैलाश पर्वत पर आ गए, वो भी नग्न अवस्था में ऐसे घूम रहे हो जैसे ऊंट होता है ना, मुंह ऊंट की तरह मुंह उठा के घुसाए, पूछना तो चाहिए था, तो ऊंट की तरह तुम घुसाए हो, तुम ऊंट बन जाओ। तो शिव जी को बोली पता है मैं यहाँ पर कैलाश में बैठी थी, ऐसे मुंह उठा करके चार नंगे बच्चे चले आए, मैंने उनको श्राप दे दिया जाओ ऊंट बन जाओ, चारों ऊंट बन गए चले गए यहाँ से। तो ना शिव जी बोले वो चार नंगे नहीं है, वो बड़े तपस्वी है, बहुत ऊंची स्थिर है उनका, वो मेरे ही भाई है, मानस पुत्र ब्रह्मा से ही मैं उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा से वो उत्पन्न हुए, मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, तुम्हारे जेठ जी लगते हैं, ये क्या किया, जेठ जी को तुमने शराब दे दिया, चलो माफी मांग लो। अभी माफी मांगने पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक ऊंट बैठा भागवत कर रहा है, तीन ऊंट सुन रहे हैं, दूसरा ऊंट बोलता है तो फिर बाकी के तीन सुनते हैं, और चारों भागवत निरंतर चल रहे हैं। तो आकर के पार्वती कहती है जेठ जी मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हुई, मैंने अनजाने में आप जैसे वरिष्ठ सीनियर डिवोटीज को क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया, अपराध कर दिया, श्राप दे दिया। तो कहते नहीं नहीं मैया, ये तो बड़ी विशेष कृपा है, जो कुछ भी होता है ईश्वर की परम इच्छा से होता है, आपकी भगवान की इच्छा थी ऐसा हो गया। भैया मनुष्य शरीर में थे, नहाना पड़ता था, गायत्री करनी पड़ती थी, बहुत काम थे, या ऊंट के शरीर में तो निरंतर बिना नहाए तो भागवत चलता रहता है, तो एक करता है दूसरा ग्रह का करता है तीसरा करता है, तो हमारा निरंतर भागवत सप्ताह चल रहा है, तो इस तरह से हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप हमें इसी योनि में रहने दें। तो फिर शिव जी ने कहा नहीं नहीं आपको आगे प्रचार करना है, तो आप लोग मनुष्य शरीर वापस धारण करें, देव शरीर धारण करें। तो फिर देव शरीर उन्होंने धारण किया। तो ऐसे जो जय विजय है इनसे भगवान ने कहा सात बार या तो भक्त बनकर आओ या तो तीन बार राक्षस बनकर आओ। तो उन्होंने कहा मैं सात बार भक्त बनकर आ नहीं सकते हैं, क्योंकि सात बार आएंगे तो बहुत समय लगेगा, तीन बार असुर बन के आएंगे तो वो जल्दी आपके वापिस आएंगे। तो एक बार हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए, एक बार दंतवक्र शिशुपाल बन के आए, और एक बार रावण कुंभकर्ण बन के त्रेता युग में आए, द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र बन के आए। अब बताओ कि तीन ही बार तो आए, तो प्रभुपाल जी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय में लिखते हैं रावण हर बार जय विजय नहीं होता है, क्योंकि ये जो चतुर्युगी है ये बार बार घूम रही है, हर बार रामचंद्र जी आते हैं, हर बार कृष्ण जी आते हैं, पर हर बार कृष्ण वो कृष्ण नहीं होते, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हर बार कृष्ण नहीं, हर बार चेतन महाप्रभु हरिनाम देने वाले चेतन महाप्रभु स्वयं नहीं आते हैं। ये क्या होता है, ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी घूमती है। अगर हम देखें ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु की रचना, एक मनु 71 चतुर्युगों में जाता है, एक चतुर्युगी 43,20,000 सालों की होती है, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 1000 बार चतुर्युगी 43,20,000 (1,000) इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा, एक दिन ब्रह्मा का हुआ। इस दिन में एक बार कृष्ण भगवान आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो हर चतुर्युगी में कौन आता है, कृष्ण के अवतार विष्णु स्वरूप भगवान आते हैं, हर बार चेतन महाप्रभु नहीं आते क्योंकि एक बार आते हैं, तो फिर कौन आता है, गौर नारायण भगवान, गोरे रंग के नारायण भगवान विष्णु चैतन्य रूप लेके आते हैं, लेकिन वो राधा कृष्ण का युगल अवतार नहीं होते।
इसी प्रकार से राम भी हर बार आ रहे हैं, ऐसे कृष्ण भी हर बार आ रहे हैं, ऐसे ही रावण भी हर बार आ रहा है। तो रावण हर बार आ रहा है तो रावण जय विजय नहीं है, रावण असुर है। इसीलिए इस श्लोक में आप देखेंगे रावण को भगवान ने कुत्ते के साथ में कंपेयर किया, उसका कंपैरिजन कुत्ते से कहा। अगर वो रावण जय विजय होता तो अपने भक्त के साथ भगवान ऐसे व्यवहार करेंगे? यहां कहा गया है भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत ग्रहित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान, क्योंकि वो घर के मालिक के ना होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है, तुमने मेरे ना होने पर मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया, कुत्ते के समान। अब आप देखिए है ना, श्रीवतः यहां पर वर्णन किया गया है कुत्ते के समान, श्वान होता है ना श्वान, श्वतः भगवान ने उसको कहा श्वतः, श्वान के समान हो तुम। अब बताओ सुखदेव गोसाई परीक्षित को बोल रहे हैं राम ने रावण को श्वतः कहा, धर्मेंद्र ने तो बाद में डायलॉग उठाया कुत्ते, रामचंद्र जी पहले बोल चुके हैं, रामचंद्र जी ने पहले बोल दिया देखो श्वतः, यहां पर बोला कुत्ते के समान, कुत्ते पहले बोला, क्योंकि कुत्ते का काम क्या है, रसोई से बिना बताए उठा करके ले जाना। ये भागवत में वर्णन है इस प्रकार से उसने भी सीता मैया को उठाया। तो ये राक्षस है, राक्षसों को इसका ज्ञान नहीं है। अब राक्षस कौन होते हैं ये भी वर्णन किया गया। अब देख लीजिएगा अपने अपने को कि हम देवता की कैटेगरी में कि राक्षस की में। राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कृष्ण सृष्टि के शासन करता, पालन करता और संहार करता है कृष्ण। ये राक्षसों को ज्ञान नहीं, जिसको नहीं है वो कौन है, हमने कह रहे भागवत में। राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सृष्टि के शासक है, तो ये व्यक्ति राक्षस हो जाता है। और ऐसे राक्षस को क्या कहा गया राम के द्वारा, श्वतः कुत्ते के समान, श्वान के समान कहा गया। अब आप सोचो कि रावण को इस प्रकार से क्यों कहा, क्योंकि रावण शब्द का परिभाषा भागवत में है। रावण का मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को कि हे सुखदेव रावण शब्द का अर्थ क्या है, क्या है रावण शब्द का, जानते हैं आप लोगों ने तो रावण लीला बचपन से देखी है, सुनी है, श्रवण किया है। रावण बार बार बोलते हैं, पुतला भी जलाते हैं रावण का, तो क्या है रावण का अर्थ, रावण कौन है, हु इज रावण, बताइए क्या है रावण का अर्थ, अहंकार। अच्छा और बताइए, अधर्म, ठीक है, ये तो आप पर्यायवाची बता रहे हैं, नहीं नहीं। और रावण शब्द का अर्थ क्या है, भगवान की किसी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर कोई काम होता नहीं, यहाँ पर इच्छा से कार्य हो रहा है। तो रावण का नाम भी उसकी माता केकसी ने और उनके पिता विशर्भा ऋषि ने नाम रखा रावण, इसका नाम क्या है। आजकल तो कोई बच्चे का नाम रावण रख दो तो कितना गंदा लगेगा दिखने में। एक है हमारे जानकार, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा है लंकेश, वो रावण के उपासक है। एक्चुअली रावण की पूजा भी होती कई स्थानों में, जैसे राजस्थान में एक जगह है मंडावर जहाँ की मंदोदरी रहने वाली थी, वो मंडावर मंदोदरी का जो जन्म स्थान है वहां का तो दामाद ही है, तो वहां पर पुतला जलाने से आपको पूरी कम्युनिटी पूरा गांव आपके शहर से निकाल देगा अगर आपने रावण के खिलाफ कुछ बोला। और रावण जहाँ के रहने वाले थे वो स्थान है बसरख, यहाँ नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से थोड़ा पास में, वहां पर भी कोई रावण का पुतला नहीं जलाता है, क्योंकि रावण वध करने से, रावण पुतला जलाने से अपराध लगता है। वो कहते हैं कि हमारा पुत्र है, एक पुत्र है एक जगह दामाद है, फिर बाद में उसने अपनी लंका तो शिवजी के द्वारा छीन ली थी तो लंका बनाई, परंतु रहने वाला इधर आपकी ग्रेटर नोएडा की है, अभी दिल्ली एनसीआर में था, दिल्ली एनसीआर का है रावण, तो वही है। क्यों क्यों कौन कौन है दिल्ली एनसीआर में रावण ढूंढना मुश्किल नहीं है, जो जो कृष्ण को नहीं मानते वो सभी रावण है। रावण का अर्थ यहाँ बोला गया है भागवत में, हा हतास्मा वयम् नाथ लोका रावण रावण कम यायत शरणम लंका त्वता विहीन पर आदितः। वर्णन किया गया है हा हा हतास्मम वयम्, हे नाथ हे स्वामी तुम अन्यों की यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे, अतः तुम रावण कहलाते थे, रावण कहलाते थे। मंदोदरी ने जब रावण मारा गया तो ये प्रार्थना मंदोदरी के द्वारा की गई, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रुओं ने जीत लिया है, बताओ अब लंका किसकी शरण में जाएगी।
ये मंदोदरी बोल रहे हैं, हा हतास्मं वयम् नाथ लोक रावण रावणा कम यायात शरणम लंका तदविहीन पर अर्दिता। हे रावण, अब ये लंका किसकी शरण में जाएगी? लोक रावण। लंका का एक नाम और आपको बता दिया, क्या नाम है? लोक रावण। जैसे अपना लोक होता है ना, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पितृ लोक, इस प्रकार से एक लोक बनाया था उसने, रावण लोक, रावण लोक। तो रावण का अर्थ यहाँ पर सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, जो अन्यों को रुलाता है, जो अन्यों को दुख देता है, पेन, वन हु गिव्स पेन टू अदर्स इज रावण। आपका एक्शन, आपकी क्रिया अगर किसी को दुखी करती है, किसी भक्त को दुखी करती है, तो आप भी तिलक वाले रावण है ना। रावण को तो कुछ भी डेकोरेशन करते हैं, आजकल बाइक पे भी बिठाते हैं पुतले को और डेकोरेशन अलग अलग करते हैं, तो हम भी है रावण। कौन से वाले? तिलक वाले रावण। अगर हम किसी को अपनी क्रियाओं से दुखी करते हैं ना, जैसे एक भक्त वर्णन कर रहे थे, एक दिन वो प्रसाद खाने बैठे और एक सीनियर डिवोटी आने वाले थे प्रसाद पाने के लिए, तो दूसरे भक्त ने उनको प्रसाद की थाली के साथ उठाया, बोले उठो वहीं आगे बैठो, यहाँ पर सीनियर भक्त बैठेंगे, क्या सही है? भाई सीनियर भक्त का भी तो अपराध हो जाता है, उसकी जगह पर कोई और बैठा हुआ है। इसे मान लो कोई व्यक्ति है महाराज के लिए व्यासासन लगाया है, उस पर अगर कोई नया व्यक्ति अगर बैठे तो आप उठो बोलोगे? नहीं, हाँ धक्का मारोगे तो लाठी मार दोगे, उसको गलत बताएगा। कैसे करना चाहिए था? विनम्रता से करना चाहिए भक्त के लिए, परंतु क्योंकि हमें दोनों को रिस्पेक्ट करना है, नीचे वाले को भी ऊंचे वाले को। लेकिन रावण क्या करता है? दूसरे को रुला देता है। ऐसी एक बार एक महाराज संस्मरण कह रहे थे अपना, कहते मैं पुजारी था मंदिर के अंदर, और तभी एक भक्त प्रवेश किया मंदिर के अंदर। भक्त प्रवेश किया तो ये जो एक महाराज लेक्चर दे रहे थे सन्यासी इस्कॉन के, और एक भक्त जब प्रवेश किया तो आकर के पर्याय होता है, भक्त के प्रति पांव छूने का भाव रहता है कि ये ऊंचे भक्त है, ऊंचे है, कैटेगरी है, अगर मैं इनकी पद धूलि लूंगा तो मुझ पर अधिक कृपा बरसेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने सन्यासी के पांव छूने का प्रयास किया। जब उन्होंने पांव छूने का प्रयास किया तो सन्यासी ने जोर से चिल्लाया, वैष्णव सदाचार के विपरीत जाते हो, मंदिर के अंदर भक्त के चरण छूना अपराध है, भक्त के चरण छूना। सच बात भी, वैष्णव सदाचार कहता है आपको मंदिर में जब भगवान का दर्पट खुला हो, वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु देवचा कहने का कोई आपको इजाजत नहीं है। दूसरे भक्त से अगर आपको प्रेम है, बाहर ले जाओ, गले लगो, झप्पी पाओ, उसको दंडवत करो, खड़वत करो, बैठवत करो, जो करना करो, लेकिन प्रांगण के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑल्टर खुला हुआ था, इधर ऑल्टर के अंदर पूजा चल रही थी और एक महाराज ने चिल्लाते हुए कहा, आपको मालूम नहीं है, अभी ऐसे ऐसे पैंट शर्ट में आए हैं, अभी नया व्यक्ति था, उसको चिल्लाते हुए आपको मालूम नहीं है भगवान के सामने पैर नहीं छूना चाहिए। तो वो महाराज जो अंदर पुजारी थे, तब वो महाराज नहीं थे, वो लिखते हैं कि जब मैं महाराज बना तब मैं इस बात को बोल रहा हूं, उस समय तो नहीं बोल पाया, और मैं सोचता हूं कि एक ऑफेंस और भी है भगवान की पूजा में, 32 प्रकार के अपराध रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दिए। एक अपराध ये भी है कि भक्त के सामने भगवान के सामने दंडवत मत करो, और एक अपराध ये भी है भगवान के सामने किसी की वाहवाही नहीं करनी चाहिए और किसी को डांटना भी। तो अगर ये भक्त अपराध कर रहा था तो वो महाराज भी साथ साथ एक अपराध, लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि ये महाराज है अपराध कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि किसी ने सन्यासी लिया है या किसी ने ब्रह्मचारी लिया है, किसी ने फुल टाइम डिवोटी बना है तो वो अपराध मुक्त हो गया है, वो एकदम अभी भगवत देह रूपी भक्त बन गया है, वो एकदम निर्धूत काषाय रूपी भक्त बन गया है, ऐसा नहीं, सभी प्रक्रिया में है भगवान की भक्ति करने के। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब में दोष दृष्टि देखते रहे, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, हमें बस ये देखना है कि हम इस प्रकार की गलतियों से दूर रहे, है ना। किसी पर चिल्लाए नहीं, किसी को कुछ बोले नहीं, अगर किसी ने पैर छू भी लिया तो गले लगा के प्रणता से उसके कान में कहे, हे प्रभु मंदिर में जब पट खुले होते हैं भगवान से बढ़कर और कोई मालिक नहीं, आप उनके सामने प्लीज मत किया करो, ऐसे बोले, ये नहीं करे ऐसे चिल्ला कर। तो दोनों में से अगर देखा जाए तो बड़ा अपराध किसका था? महाराज का बड़ा अपराध था या उस भक्त का बड़ा अपराध था? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान होने के बाद भी ऐसी बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे ना। तो
तो इसलिए वो भाव महाराज वर्णन करते, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये संस्मरण है, इसको हमें सीखने के लिए, ना ही हम उन महाराज के प्रति कोई अपराध की दृष्टि रखते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप लोग भी कोई दृष्टि ना रखें किसी के प्रति, हम जो भी कुछ सीखना चाहते हैं इसका कारण यही है ताकि हम सीखें, लर्निंग है ना किसी के प्रति। तो यहाँ पर रावण का मतलब है जो दूसरों को रुलाता है, वो किसी भी वेश में रहे, है ना। और सीता मैया जो थी उनके बारे में आप जानते हैं कि वो कैसी थी, सती रूप में सीता मैया थी। उनके बारे में कहा गया है, सौभाग्यवान तुम काम वासना के वशभूत हो गए थे, तो कहती है मंदोदरी, और तुम सीता देवी के तेज को नहीं समझ सके, तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो, क्योंकि तुमने सीता का अपराध किया इसलिए तुम इस दशा को प्राप्त हुए। रावण से पूछा गया कि हे रावण तुमको किसने मारा, सारी पत्नियां उसकी सभी आ गई और सबने पूछा, उनके सभी परिवार के लोगों ने, उनके नाना भी आए थे माल्यवान, पूछा हे रावण तुमको किसने मारा, तो रावण ने क्या कहा, मुझको मैंने मारा। अरे हमने तो सुना राम ने मारा, आप बता रहे मैंने मारा, किसने मारा था रावण को, उसकी मैंने मारा था। रावण मरने से पहले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में कहता है, हे शिव मैं जान गया हूं कि अब आप कुछ बोलोगे नहीं, मैं जानता हूं आपने मौन व्रत धारण किया है, चुप होकर के बैठ गए हो, है ना, बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे थे। पार्वती ने कहा कि देखो आपका भक्त मारा जा रहा है, इसके हाथ पांव कट रहे हैं, इंद्र का द्वारा दिया गया एक रथ और उनके द्वारा दिया गया सारथी मताली कुछ नहीं कर पा रहा है आपका ऊपर, वो इंद्र को बिठा करके, इंद्र का जो रथ था राम को बिठाकर हवा में आ गया है, देखो मार रहा है, रावण की शक्तियां कुछ काम नहीं कर रही हैं, अब तो कुछ मदद करो हे भोलेनाथ, पार्वती ने कहा। तो पार्वती को शिव जी कहते हैं मौन व्रत, कुछ चुपचाप बैठी रहो, तुम भी जप करो मुझे भी करने दो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस तरह से मुझे भी मौन व्रत करके जप करने दो, तुम भी मौन व्रत कर, बोलो मत। तो पूछते क्यों, पहले तो आप बचाते थे, अब क्यों नहीं बचाते हो, जब भी तकलीफ आई रावण के ऊपर सभी देवी देवता बचाना चाहते थे, मारना चाहते थे, तब आप बचाते थे, आज क्यों नहीं बचाते। बोले अभी इसने है ना, जो बचाने वाला है सबको मारने वाले से पंगा ले लिया, तो मैं इसको क्या बचाऊंगा, है ना, सबको मारने वाले सबको बचाने वाले कौन है, भगवान कृष्ण राम, है ना, रक्षति ते कृष्ण ना रक्षति ते कृष्ण, अगर कृष्ण रक्षा करें तो भी भगवान ही है, अगर ना रक्षा करें तो भी वही भगवान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रक्षा करें तो भगवान है, नहीं करें तो शैतान है। हे प्रभु मैंने आपसे इतनी प्रार्थना करी, आपने मेरी मुराद पूरी नहीं करी, अब से आप शैतान, अब से आप भगवान नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, इस प्रकार से सीता मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी अशोक वाटिका में, उस वृक्ष का नाम वर्णन करते हैं जो कि रामायण में नहीं आता है लेकिन यहाँ पर आता है, क्या नाम है बता सकते हैं, अशोक तो उसकी कैटेगरी थी, नाम क्या था उस वृक्ष का, अशोक वाटिका थी, अशोक वृक्ष थे, तो वाटिका थी उस वृक्ष जिसके नीचे सीता मैया ने अपने 10 महीने गुजारे, 10 months 10 महीने तक उसके नीचे थी, तो कौन सा नाम था, तो यहाँ पर उसका नाम वर्णन किया गया है, शमाम स्वविराय व्याधिम शिंशपा मूलम आश्रितम, शिंशपा, शिंशपा नामक वृक्ष की मूलम जड़ के पास आश्रितम सहारा लेकर के सीता मैया बैठी रहती थी। शिंशपा क्या नाम था, शिंशपा नामक वृक्ष था। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वही चीजें बता रहे हैं जो कि अलग भक्तों ने वर्णन नहीं किया है, इसीलिए पहले भाई बोल दिया, तुमने राम की लीलाओं को बहुत सुना होगा, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल गुहित कारण ही बताऊंगा, बाकी चीजें नहीं बताऊंगा, तुमने बहुत सुना है, चतुर्युगी 4 बार घूम गई है, राम की लीलाएं चले जा रहे गाए जा रहे हैं, लोग वर्णन किए जा रहे हैं ना, तो इसलिए वो तुमने सुन रखा है, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। इसका मतलब 5000 साल पहले भी राम की कथाओं का बहुत बड़े बड़े आयोजन होते थे, ऐसा नहीं कि अभी आज की राम कथा, अभी बोले आजकल थोड़ा पॉपुलरिटी ज्यादा हो गई, यूपी में ज्यादा राम कथा होती है, ये 5000 साल पहले भी राम कथाओं का आयोजन होता था। और इवन वर्णन आता है एक रामायण जिसका नाम है कंभ रामायण, कंभ रामायण है जब हनुमान जी ने शिलाखंडों के ऊपर जिससे पुल बना था, बाद में भगवान ने उन सारे पुल को तोड़ दिया। एक स्थान आता है जो कि रामेश्वरम से थोड़ा आगे जाकर आता है, उस स्थान का क्या नाम है, धनुषकोटी, धनुष से भगवान ने अपने एक तीर चला के पूरे पुल का विनाश कर दिया था, ताकि बाद में गए सीता जी को लेकर तो पुष्प भी मान से आए, तो जब पुष्पक से लौटे बोले अभी पुल का क्या होगा, विभीषण के यहां, विभीषण तो माना भक्त है परंतु बाकी तो राक्षस है, किसी का मन पलट गया फिर पृथ्वी पर आ जाएगा, तो ये पुल ही नहीं रहता बीच में रास्ता। तो एक धनुष कोटि से धनुष चला के उस पूरे पुल का विनाश कर दिया था, सेतु बंद रामेश्वरम से। तो वो जो पुल के जो बचे शिला तैरने वाले, हनुमान जी ने सब एकत्रित किए और उन पर राम की लीलाओं का गुणगान लिखा, पाली भाषा कहते हैं उसमें लिखा। तो इस प्रकार से वो समुद्र में से कुछ पत्थर अभी भी निकाले गए और उन पत्थरों के अंदर से जब लिखी गई तो एक रामायण है दक्षिण भारत में जिसका नाम है कंभ रामायण। कंभ रामायण में वर्णन है कि जब भगवान के पिता दशरथ महाराज के घर कोई पुत्र नहीं था और वो अपनी दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे शिकार खेलते खेलते, तो एक दिन वो एक गोपाल मंदिर में गए। कौन से मंदिर में गए? गोपाल मंदिर में गए, जहां पर लड्डू गोपाल जी का विग्रह था। और दशरथ महाराज ने लड्डू गोपाल विग्रह की प्रार्थना करी और उनसे कहा कि हे लड्डू गोपाल, मेरे गर्भ आपके जैसा गोपाल आएगा। इसीलिए जब आप भगवान राम का बचपन देखेंगे तो उनका बचपन का रूप भी वैसा ही है जैसा राम का रूप है, जैसा राम का भी वैसे ही है जैसे कृष्ण का रूप है, दोनों का लड्डू गोपाल जैसे ही। बस फर्क इतना है, राम ने अपने हाथ में धनुष ले रखा है, तीर ले रखा है, और कृष्ण ने अपने हाथ में लड्डू ले रखा है। तो बस इतना ही फर्क है, वरना दोनों की बाल लीलाएं बिल्कुल एक जैसी है। अब देखो कितना ही गुहितम है ये। एक जगह ये वर्णन हो रहा है कि कृष्ण भगवान का दर्शन करने गए राम के जन्म से पहले, और एक जगह यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तुमने राम की कथाएं तो पहले से सुन रखी है, तो ये समझ में नहीं आता पहले कौन है, राम है कि कृष्ण है। तो इसको समझने के लिए हमें शास्त्र चक्षुषः, शास्त्र के चक्षु से देखना पड़ेगा। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक वर्णन करता है कि संसार के आदि भगवान कौन है, कृष्ण भगवान। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, परंतु जब वो राम आदि शिव मूर्ति, शिव राम आदि मूर्ति लेकर, नरसिंह मूर्ति लेकर प्रकट होते हैं तो भगवान की विशेष लीलाएं होती हैं। अब इस लीला के अंदर और अंतिम पड़ाव में जब रावण का वध हुआ तो यहाँ पर एक सीखने वाली बात और परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे परीक्षित, श्री शुक उवाच स्वाराम विभीषणम चक्रे कौशल इंद्र अनुमोदितः पितृमेधा विधानेन यत् उत्तम संपारिकम। वर्णन है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र ने अनुमति प्राप्त हो गई कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ। रावण के बाद में राजा कौन बना? विभीषण। विभीषण राजा बन गए श्री राधा मदन लाल की, तो वो विभीषण वहां के राजा बने। अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनेगा दोनों कानों को इधर करके, अनुमति प्राप्त हो गई उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। एक शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर प्राप्त करना है, किंतु कभी कभी यदि वे अधिक पापी होता है तो दूसरे शरीर में देहांतर करना नहीं दिया जाता, उससे उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। लोग बोलते ना कहा भूत भूत नकली बातें होती है, तो भागवतम में यहाँ पर वर्णन है प्रेत योनि प्राप्त होती है अगर एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करने नहीं दिया जाता है। अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि आपने शरीर धारण करने के लिए कुछ कर्म नहीं किए, बच्चों को पिंडदान ही नहीं सिखाया, तो ऐसा व्यक्ति जो है पिंडदान नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति के सही क्रम नहीं होंगे, क्रियाकर्म नहीं होंगे, तो उस व्यक्ति को प्रेत योनि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर नरक जाने वाला था रावण। रावण कहाँ जाने वाला था? नरक जाने वाला था, और उनके सभी पारिवारिक लोग। लेकिन जो पितृ पूजा की विभीषण ने, उसके कारण क्या हुआ? नरक जाने से बच गया, नरक जाने से बचा लिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है ना पितृ पूजाओं को दें। यहाँ पर कहा है रावण का वध भगवान रामचंद्र द्वारा हुआ था, अतः उसे नरक में जाना था। अब एक प्रश्न उठता है, राम ने जब रावण का वध किया तो राम को, राम के वध से रावण को कहां जाना चाहिए था? मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष का क्या मतलब है? हाँ जी, दोबारा जन्म ना हो, है ना, वैकुंठ चला जाए, मोक्ष प्राप्त। लेकिन यहां लिखा है रावण का वध भगवान रामचंद्र द्वारा हुआ था, अतः उसे नरक में जाना था। नहीं, मैं तो नहीं लिखा, प्रभुपाद जी का तर्क पर नरक क्यों ऐसा क्यों लिखा? भगवान राम को कहते हैं कि राम की दृष्टि इस पर पड़ जाए वो भगवत बन जाए, नहीं हो जाए।
आपने सुना नहीं है अभी, वो जय विजय थे, अभी जय विजय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रावण की बात हो रही है। रावण जिसको सुहवत कुत्ते के समान कहा गया है, उस राक्षस को नरक जाना था अपने कर्मों के अनुसार, परंतु कहते हैं राम जिसको मारेंगे भगवान वो तो कहाँ चला जाएगा, धाम चला जाएगा, ऐसे लोग प्राय बोलते हैं, परंतु ऐसा गलत है। जिसको भगवान कृष्ण मारते हैं बस, जब भगवान कृष्ण जिस व्यक्ति को मारते हैं तो व्यक्ति वैकुंठ में मुक्ति, जैसे अघासुर, बकासुर, शिशुपाल, या फिर जैसे मान लीजिए पौंडरक, ऐसे जो पापी थे जिन्होंने भगवान कृष्ण से द्वेष किया, उनका वध करने पर कृष्ण के अंदर ये शक्ति है, क्योंकि वो आदि भगवान है, कि व्यक्ति उनसे द्वेष में भी अगर भक्ति करता है उनकी, तो उनको सारूप्य, उनके जैसा रूप वैकुंठ में प्राप्त होता है। लेकिन अगर प्रेम करो तो गोलोक प्राप्त होता है। लेकिन अगर रावण ने क्या किया, रावण ने राम से द्वेष किया, और राम कृष्ण के अवतार है, अवतारी नहीं, अवतार, अवतार के अंदर वो शक्ति नहीं देते हैं कृष्ण कि किसी को ये मोक्ष प्रदान करते। ये मोक्ष का मतलब है, तरने का बस इतना ही मतलब है कि नरक जाने से बच जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर कहीं नहीं जा सकता, इससे ऊपर कहीं नहीं जा सकता कि धाम चला जाएगा। तो रावण धाम में नहीं गया, भगवान रामचंद्र की सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतकों के लिए निर्धारित सारे कर्म संपन्न किए। इस तरह भगवान रामचंद्र रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे, कि चलो उसका पितृकर्म कर दो, पितृकर्म कर दो, कुछ मंत्र जाप कर दो, थोड़ा कीर्तन कर दो, विभीषण क्या बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से विभीषण को राजा बना करके एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार भगवान ने प्रदान किया। एक कल्प, एक कल्प का मतलब क्या होता है, एक कल्प का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक कल्प। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं। चतुर्युगी जब 1000 बार घूम जाएगी, 43,20,000 सालों का चतुर्युग जब 1000 बार घूम जाएगा, तब विभीषण जी अपनी सेवाओं से नियुक्त हटाए जाएंगे, अभी तो नियुक्त किए जाएंगे। तो एक कल्प तक की सेवा विभीषण को प्रदान की गई है ना, और उसके बाद भगवान हनुमान सुग्रीव भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या को लौट आए, और इसके बाद दीपावली की लीलाएं प्रारंभ होती है, कि किस प्रकार से दीपावली मनानी चाहिए है ना। तो इसको हम दीपावली पे करेंगे, आप लोग फिर आइएगा, ठीक है। तो भगवान राम की लीलाओं से बहुत कुछ सीखने के लिए है, किस प्रकार से भरत महाराज ने, मतलब अगर एक एक चीज के ऊपर अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा गुह्यतम इसके अंदर सीखने योग्य चीजें हैं, कि भगवान राम की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। भगवान राम जब वापस अपने अयोध्या धाम आए तो उनका मुंडन संस्कार किया गया, दोबारा से जटाओं को काटा गया, तो भक्तों को भी अपने मुंडन का संस्कार करते रहना चाहिए, जटाओं को काटते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाएं सीखने के लिए, आनंद के लिए, और राम की लीलाएं अपनाने के लिए। राम की लीलाएं मर्यादा की लीलाएं अपनाई जाए, इन लीलाओं के द्वारा अपना जीवन जिया जाए, और कृष्ण की लीलाओं से रस लिया जाए, शुद्धिकरण लिया जाए, क्योंकि तो कृष्ण का आप अनुकरण नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने 16,108 रूपों में अपना विस्तार किया, क्या हम कर सकते हैं? कृष्ण भगवान ने गिरि गोवर्धन 7 दिन तक उठाया, क्या हम उठा सकते हैं? कृष्ण भगवान ने 18 बार जरासंध को 17 बार हटाया, हराया, क्या हम कर सकते हैं? कृष्ण भगवान ने माखन चोर की लीला करी, फिर भी उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। कृष्ण भगवान ने वस्त्र हरण की लीला करी, फिर भी उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। हम कोई छोटी सी चोरी करेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा, तो हम भगवान कृष्ण की मुकाबला नहीं कर सकते। परंतु राम जिस प्रकार से अपने भ्रात, अपने परिवार के लोगों के साथ जीवन जीते थे, अगर हम वैसे जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन जरूर जैसा वर्णन किया गया है वैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न आधि व्याधि जरा ग्लानी, उस जीवन में क्या क्या नहीं रहेगा? न आधि, आधि मतलब तीन, आधि वैदिक, आधि आधि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीन प्रकार के त्रितापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। न आधि व्याधि, व्याधि मतलब रोग, न आधि व्याधि जरा ग्लानी दुख शोक भय क्लमा, उस व्यक्ति के जीवन में न दुख आएगा, न शोक आएगा, न उसको कोई रोग आएगा। राम कथा सुन के भी रोग आता, क्यों आता? क्योंकि राम कथा में मन ही नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता, हम सुनते तो हैं एंटरटेनमेंट की तरह, ओ अच्छा, इज इट पॉसिबल, पता नहीं, ऐसे करेंगे बेड़ा गर्क,
अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सच में परिवर्तित हो तो क्या है, इसको प्रेम पूर्वक सुनिए। आधि व्याधि जरा ग्लानी दुखा शोक भय क्लमा मृत्यु चा अनिच्छाताम न आसीत राम रजनी दोक्षजे। जब भगवान रामचंद्र जग के राजा थे तो सारे शारीरिक मानसिक कष्ट रोग बुढ़ापा विक्षोभ पश्चाताप दुख डर थकावट का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि न चाहने वाले की भी मृत्यु नहीं थी। मतलब अगर कोई ये चाहता है कि मेरी मृत्यु ना हो तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। मतलब मृत्यु पर भी भगवान ने विजय प्राप्त कर दी। और आप जानते हैं राम से बड़ा राम का नाम। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है फिर से, राम से अगर बड़ा राम का नाम है और एक तरफ हम कहते हैं राम और राम के नाम में कोई भेद नहीं है, तो जितना जितना राम बड़े होंगे उतना उतना नाम भी तो बड़ा होगा, तो राम से नाम कैसे बड़ा हो गया, क्वेश्चन है कि नहीं। राम से बड़ा राम का नाम, नाम कैसे बड़ा होगा, क्योंकि राम बड़े होंगे तो नाम भी उसी संख्या में उसी रूप में उसी आकार में बड़ा होगा। राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो गया, तो समरूप है परंतु एक लीला है जिससे हम समझ सकते हैं राम से राम का नाम कैसे बड़ा होता है। एक बार हनुमान जो भगवान के बड़े पवित्र भक्त हैं, कभी भी उन्होंने खड़े होकर के एक भी ग्रुप फोटोग्राफ नहीं खिंचवाया भगवान के साथ। लोग फोटो खिंचाते हैं भगवान के साथ, बोले एक सेल्फी हो जाए, गाना भी आया था सेल्फी ले 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 ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया भगवान ने कि कोई फोटोग्राफ खींचा हो। हमेशा से अपनी स्थिति को जानते हैं, दास 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 अनुदास, नीचे बैठे हैं घुटने फोल्ड करके गदा साइड में रख के, बोले बस भगवान आपके चरणों में जगह मिल गया। तो एक बार भगवान राम बैठे थे और हनुमान उनके चरणों में मालिश कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। पैर दबाते दबाते हनुमान से राम पूछते हैं कि हे हनुमान आप बताओ इस जगत का देखरेख करने वाला कौन है। तो हनुमान पैर दबा रहे थे और पैर दबाते दबाते बोलते हैं, प्रभु कैसी बात पूछते, इस जगत में इस जगत का सारा उद्धार करने वाले आपके अलावा कौन है, श्री राम आपसे ऊपर तो कुछ भी नहीं। तो भगवान ने कहा देख लो हनुमान सत्यवादी, क्योंकि मैं चला जाऊंगा साकेत धाम अंत में अपनी लीलाओं को समाप्त करके और सभी अयोध्या वासियों को ले जाऊंगा, पर तुम रह जाओगे क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं। ऐसा लिखा राम के राज्य में कैसा था, जिसकी इच्छा नहीं है उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। तो हनुमान तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी कथाओं में आनंद लेना चाहते हो, तो तुम तो यहीं रह जाओगे, तुम तो जाओगे नहीं। तो इसीलिए अब ये बताओ सच सच बात करो, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोग आपसे पूछेंगे, हे हनुमान सत्य भाषण करो। सत्य भाषण करने के लिए हनुमान कहते हैं, आंखों में आंसू आ गए, कहते प्रभु सत्य भाषण करूंगा आपको दुख तो नहीं होगा। भगवान बोले मैं तो दुखों का शमन करने वाला हूं, अगर मुझे ही दुख हो गया तो फिर ये संसार चलेगा कैसे, मुझे कोई दुख नहीं होता, बोलो। तो बोले प्रभु आपसे बढ़कर के आपका नाम। हनुमान ने कहा हे प्रभु आपसे बढ़कर के आपका नाम है जो संसार के कलमश का नाश करता है। तो रामचंद्र जी ने कहा कैसे, जितना बड़ा मैं हूं उतना बड़ा तो मेरा नाम भी है। कहा नहीं प्रभु, आप जब त्रेता युग में आते हैं तो आप लोगों का उद्धार करते हैं और उसके बाद आप साकेत धाम को अपने साथ उद्धारी भक्तों को लेकर के अयोध्या चले जाते हैं और पापी स्वर्ग चले जाते हैं जिन्हें आप वध करते हो। लेकिन आपके चले जाने के बाद भी द्वापर युग हो या त्रेता युग हो या कलयुग हो, हर चतुर्युगी में सबका उद्धार करता है आपका नाम। तो आपके नाम की उद्धार की महिमा अधिक हो जाती है आपके साक्षात रूप की। इसलिए बोलते हैं राम से बड़ा राम का। आप देखिए आज भी जब श्रील प्रभुपाद इस छिप्पीवाड़ा मंदिर से उठकर के कहां गए थे, विदेश गए थे, तो उनके साथ कृष्ण नहीं गए थे, उनके साथ राम नहीं गए थे, उनके साथ कौन गया था, नाम गया था। और नाम की शक्ति के बल पर भगवान स्थापित हुए, नाम की शक्ति के बल पर पूरा विश्व आज श्रील प्रभुपाद जी के शरण में है और हम सब भी आज हैं क्योंकि आज श्रील प्रभुपाद जी के नाम पर विश्वास था। अगर वैसा विश्वास हमको होगा राम कथाओं में तो हमारी भी काया निरोगी होगी, हमारे भी पापों का शमन होगा और हम भी इच्छा से द्वेष से क्या हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री रामचंद्र भगवान की विजयदशमी महोत्सव की भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री राधा वल्लभ लाल की पंचतत्व गोविंदताय भगवान की जय पतित पावन जगद्गुरु श्री कृपाल की जय निताई निताई गौर हरि कृपा
प्रसाद।